कहते हैं भक्त कबीर जी महाराज कि वह कैसा ब्रह्म है, वो अक्षर है यानी चरण से रहित है, नाश नहीं होता। तो एक है, एक गुरु नानक महाराज जी, गुरु अर्जुन देव जी महाराज जब भी मंगलाचरण करते हैं तो एक के साथ में करते हैं, एक विशेषण लगाते हैं। ओंकार तो पहले से ही आता ही है, एक में लगाया साथ में, एक मेवा द्वितीयम ऐसा भी कहते हैं, भगवती श्रुति कहती है एक मेवा द्वितीयम, एकम एव अद्वितीयम। कैसा वह परमात्मा है, एकम एव, एव लगाते हैं तो सबका निषेध करते हैं, तो किसका निषेध करते हैं, एकम एव कह करके कहते हैं कि उस परमात्मा में, उस ब्रह्म में सजातीय अवजातीय स्वगत भेद नहीं है, ना उसका स्वजाति कोई है यानी उसका जाति वाला उसके जैसा और कोई नहीं है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी इसी को समझाते हुए कहते हैं, जब जाप साहब आरंभ करते हैं तो क्या कहते हैं, चक्र चिन्ह अर वर्ण यात अर पात नहन जह रूप रंग अर रेख भेख, वो कह न सकत केह अचल मूर्त अनुभव प्रकाश, अमितोज कह जय कोट इंद्र इंद्राण साह सहाण गणिज, त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत, तो सर्प नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। इसी की व्याख्या करते हैं कि वह कैसा है परमात्मा, चक्र चिन्ह अर वर्ण जात, ना उसका कोई चक्र है, ना उसका कोई चिन्ह, उसकी निशानी कोई नहीं है, उसका कोई वर्ण नहीं है, उसकी कोई जाति नहीं है, उसकी कोई पाति नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, रूप ना रंग ना कुछ भी नहीं है, कहीं से भी बैठा लो आप, रूप ना रेख ना रंग किस त्रिगुण ते प्रभ भिन्न। कोई भी पंक्ति उठा के देखो आप, ऐसी ही व्याख्या करते हैं महाराज जी। ये अलग बात है कि हम लोग समझने की चेष्टा नहीं करते, क्योंकि जो गुरवाणी है ये केवल एक जिज्ञासु के लिए नहीं है, और जो जिज्ञासु होते हैं वह तीन ही प्रकार के होते हैं, मध्यम है, उत्तम है, कनिष्ठ है, अथवा जो इस लाइन पर चल रहा है ना, ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि सभी लोग ज्ञान कांड के अधिकारी हैं, ऐसा नहीं है। कोई कर्म कांड का अधिकारी है, कोई उपासना करता है, कोई ज्ञानी है, और जो भी उपदेश महाराज जी बख्शिश करते हैं ना गुरुवाणी में, महापुरुषों का सिद्धांत है, निर्मलों का, उदासीन महापुरुषों का, जितनी संप्रदाय के लोग हैं उनका सिद्धांत है कि जब वो गुरुवाणी की व्याख्या करते हैं तो तीनों प्रकार से करते हैं, एक प्रकार से नहीं करते हैं। वो कर्म कांड वालों के लिए भी बताते हैं, उपासना वालों के लिए और ज्ञान के लिए भी बताते हैं। आपको और कहीं ऐसी व्याख्या मिलती नहीं है। ये परम पवित्र जो उपदेश बख्शिश करते हैं, इसको जो कोई जैसा चिंतन करता है वो अपने में वैसा ही घटाता है। ज्ञानी के लिए यह जो मंगलाचरण है, ज्ञानी उसको निर्गुण निराकार से मिलाते हैं, इसी मंत्र का चिंतन करते हैं, निराकार परमात्मा के साथ अभेद चिंतन करते हैं। और जो कर्म कांड वाले हैं, जो उपासना कांड वाले हैं, वो सगुण साकार परमात्मा के साथ उसकी उपासना इस मंगलाचरण से करते हैं, इसका उपदेश उनको ऐसा ही लगता है और करना भी ऐसा ही चाहिए। यह नहीं कि सुन लिया किसी ज्ञान की बात तो कर्म कांड उपासना कांड यानी कर्म भी छोड़ दिया, उपासना भी छोड़ दी, तो ज्ञान के हम अधिकारी नहीं है और रास्ता नहीं मिलेगा। तो गुरु महाराज जी इस मंगलाचरण की व्याख्या इतनी गंभीरता से करते हैं गुरुवाणी में, दशम में, और भी जितने भी महापुरुष हैं अपनी अपनी विधा के अनुसार व्याख्या करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि रूप न रेख न रंग किस, उसका ना रूप है ना रंग है। रूप यानी उसका आकार नहीं है, निराकार है वो, रंग भी उसका कोई नहीं है, यानी और नाम और रूप से रहत है वह परमात्मा। ना उसमें सजातीय भेद है, ना विजातीय है, ना स्वगत है, ना वह काल और वस्तु के परिच्छेद से भी रहित है। उसमें काल का भी परिच्छेद नहीं है, वस्तु का भी परिच्छेद नहीं है, देश का भी परिच्छेद नहीं है। एकम एव अद्वितीयम से क्या कहते हैं, ना उसमें सजातीय भेद है, ना विजातीय, ना स्वागत, अथवा क्या कहते हैं, देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहत है। देश काल और वस्तु यानी वह ऐसा है कि हर देश में, हर काल में, हर वस्तु में है। ये कहाँ कहा है महाराज जी ने कि वह हर काल में है? गुरबाणी कहाँ बताती है, आदि सच जुगादि सच है भी सच। गुरु महाराज जी एकम एव अद्वितीयम को खोल के उसकी व्याख्या करते हैं, कहते हैं कि वो कैसा है, आदि सच। और वेद भगवान क्या कहते हैं, सदैव सोमे सदैव इदम सदो, ये जो परमात्मा है ये इदम अग्र आसीत, सोमे सदैव ये जो परमात्मा सत एव इदम अग्र आसीत। परमात्मा कैसा है, ये पहले भी था, सदैव सोमे इदम अग्र आसीत। परमात्मा कैसा था, सत एव सत ही अग्र आसीत। कब से, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले परमात्मा बीज रूप में सदैव सोमे इदम अग्र आसीत। वो परमात्मा कैसा था, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले वह सत एव सत ही था। सत रूप में कैसे था, बीज रूप में था। अब कैसे है, अब जितनी कायनात है ना ये इस रूप में भी उपस्थित है और सबके अंदर भी उपस्थित है। तो गुरु महाराज जी भी कहते हैं कि आद सच यानी सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सत था। और जुगाद सच का अर्थ क्या है, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई उस समय, जब सृष्टि प्रारंभ हुई, जब युगों का प्रारंभ हुआ, तो सत वह परमात्मा कैसा है, सत था और है भी सच। अब वर्तमान काल में भी वह सत है, सच है। और जब ऐसा सृष्टि का प्रलय हो जाता है तब भी नानक होसी भी सच, वह सत ही रहेगा, सत ही है। उसमें काल का परिच्छेद नहीं है और देश का परिच्छेद नहीं है, हर एक जर्रे जर्रे वह में मौजूद है। केवल उसको समझने की चेष्टा करनी चाहिए। जैसे एक आग ते कंडूका कोट आग उठे, न्यारे न्यारे होए के सब आग में समाहेंगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कहते हैं जैसे एक अनादित्य तरंग कोट उपजित है, कोट पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। जैसे एक धूरते अनेक धूर पूर्त है, धूर के कनुका सब धूर ही समाहेंगे। तैसे विश्व रूपते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज फिर ताही में समाहेंगे। व्याख्या करते हैं महाराज, एक की व्याख्या करते हैं। परमात्मा एक कैसे है, जैसे कहते हैं एक जो अग्नि है ना, अग्नि से अनेक चंगारियां निकलती हैं, और वो जो चंगारी निकलती है अग्नि से वह कहाँ जाती है, जैसे एक आग ते गनुका कोट आग उठे, कहते हैं अनेक चंगारियां निकलती हैं आग से और फिर कहाँ जाती है, आग में समाहेंगी। वो कहाँ जाती है, अग्नि में ही समाहित हो जाती है। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, नद यानी नदी अथवा समुद्र उसमें से करोड़ा तरंग लहरें उत्पन्न होती है, परंतु पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। होता क्या है, जो पानी में लहरें है ना, तरंगे हैं, वो क्या है, पानी ही है। जल तरंग और फेन बुदबुदा जलते फिन न होई, अलग कुछ नहीं है, जल है, तरंग है, फेन है, बुदबुदा है, जलते भिन्न न होई, केवल जल ही है ना। ऐह ही सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, परमात्मा ही परमात्मा है, उसके बगैर नाम रूप भिन्नता है, नाम रूप को छोड़ करके अलग नहीं है। ऐसा वह परमात्मा है, उससे अभूत भूत प्रकट हुए, उसी से जो विश्व रूप परमात्मा है ना, उससे अभूत भूत प्रकट हुए, उसी से अभूत ते भूत, यानी उसी से सूक्ष्म सृष्टि अभूत और स्थूल सृष्टि भूत, उसी से पैदा हुई है, तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए। अभूत का अर्थ है कि जो सूक्ष्म पांच तत्व है, अथवा जो सूक्ष्म सृष्टि है, अथवा जो सूक्ष्म शरीर है, और भूत का अर्थ है कि जो सामने दिखाई दे रहा है, व्यक्त रूप में जो दिखाई दे रहा है, स्थूल सृष्टि है, उसी परमात्मा से निकली है, तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए, प्रकट हुए कहते हैं, प्रकट जन्म लेना और प्रकट होना अंतर है ना दोनों में। जन्म लेने वाले को प्रकट नहीं बोलते हम लोग, हम लोग कहते हैं कि इस आदमी का इस दिन जन्म हुआ है, और भगवान का क्या हुआ है, प्राकट्य हुआ है, प्रकट हुए हैं भगवान, यानी वो किसी योनि में नहीं आए हैं, प्रकट हुए हैं, हमारे सामने उपस्थित हैं, प्रत्यक्ष हुआ है उनका। तो ये क्या हुआ, जब महाराज जी गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं अभूत भूत प्रकट हुए, यानी उस परमात्मा वो ऐसा है ब्रह्म की सूक्ष्म और स्थूल रूप में प्रकट हुआ है, परमात्मा बदल गया नहीं है, दिखाई देने लगा है, बदला भी नहीं है, कैसा हो गया, एक था ना वो, एक ओंकार से शुरू करते तो एक में क्या हुआ, एक को हम समझेंगे कैसे, एका माई जुगत ब्याई तीन चेले परवान, एक को कैसे समझेंगे, इतना तो सुन लेते हैं, एक ओंकार पढ़ भी लेते हैं और सुनते भी हैं, लेकिन वो एक कैसे है, जब हमारे को अलग अलग दिखाई देता तो एक कैसे हुआ। जितने संसार के लोग हैं, जितने धर्म हैं, उनका अपना अपना अलग अलग इष्ट है, तो परमात्मा एक कैसे हुआ, गुरु नानक देव जी महाराज एक कहते हैं तो एक कैसे हुआ, सबका अलग अलग परमात्मा हो तो कितने हो गए, एक को समझना कैसे, एका माई जुगत व्याई तीन चेले परवान, वह परमात्मा सगुण साकार हो गया, निर्गुण निराकार से क्या हुआ, सगुण साकार हुआ, कैसे हुआ, एका माई वह परमात्मा एक था तो अलग अलग हो गया, तीन रूप उसके हो गए। माई का अर्थ क्या है, एका माई, माई का अर्थ माया नहीं है, माई का अर्थ माया नहीं है, माइनम तु महेश्वरम, श्रुति भगवती इस बात को कहती है, मायाम तु विद्याम तु माया, जो विद्या है अविद्या है ना वो माया है, या उसको माया कहो या अविद्या कहो, और माइनम तु महेश्वरम, जो महेश्वर का अर्थ है परमात्मा है माइनम, तो माइनम का अर्थ है माई, वह परमात्मा कैसा है, महेश्वर परमात्मा ब्रह्म, ब्रह्म का नाम है माई, माया का नाम माई नहीं है, वह परमात्मा जो माई अर्थ माया वाला, जैसे धन वाला धनी होता है ना, ऐसे प्रकृति तो जो प्रकृति है ना उसको कहते हैं माया समझो, उसको भगवती श्रुति कहती है कि जो प्रकृति है उसको आप माया जानो, और माइनम तू महेश्वरम, जो परमात्मा ब्रह्म है उसको कहते हैं माई, माया वाला, तो गुरु नानक देव महाराज जी कहते हैं एका माई, जो एक परमात्मा था ना ब्रह्म, वो कहते जुगत व्याई, जुगत हुआ, युक्त हो गया किससे, माया से। माया सबल भी बोल देते हैं, माया युक्त भी बोल देते हैं। जब माया युक्त हुआ तो क्या हुआ, सगुण साकार हो गया। तो कैसा हो गया, तीन चेले परवान, तीन रूप में हमारे को दिखाई देने लगा। किस रूप में, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दी बाण। और ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में व्यक्त हो गया। ये उसके सगुण साकार रूप की व्याख्या है, है एक है लेकिन बदल गया तीन रूप में। बदला तो नहीं है वास्तव में, हमारी दृष्टि में बदला है, वैसे बदलता नहीं है। यदि बदल जाता तो एक ना कहते महाराज, बदलता ही नहीं है। आज सच जो आज सच है भी सच, बदलता नहीं है वो। ना उसका कोई शरीक है, ना उसका कोई जाति है, ना पाति है, कोई है ही नहीं। साहिब मेरा एको है भाई, एको है, दूसरा कोई भी नहीं है। यदि दूसरा हमारी दृष्टि में जो दिखाई पड़ता ना दूसरा, वो जो दूसरा यानी द्वैत हमारे अंदर है, तो हमारे को दूसरा कौन दिखाई पड़ता है, जगत। ब्रह्म से इतर क्या है, ये संसार जो दिखाई पड़ता है, इसी को देख करके हम दूसरा कहते हैं ना। अवर दूजा क्यों सेवी है, जमे तय मर जाए। दूसरे की उपासना करने से जन्म मरण मिलता है और कुछ नहीं मिलता, यानी दूसरा कोई है नहीं। तो परमात्मा कैसा है, एक है, एक ओंकार, एक परमात्मा है। और ओम कैसा है, वो सबकी उत्पत्ति और सबकी रक्षा और सबकी प्रलय वह करता है। ओम कहने से ऐसा महापुरुष लोग अर्थ करते हैं हमारी गुरबाणी के सिद्धांत के अनुसार, कि परमात्मा ओम का अर्थ है सबका उत्पत्ति करने वाला और सबकी रक्षा करने वाला, सबकी लयता संहार करने वाला। कैसे समझ जाते हैं, कैसे पता चलता है, गुरु नानक महाराज जी कहते हैं ओंकार ब्रह्म उत्पत्त। कोई सुनी सुनाई बात की व्याख्या नहीं होती है, लक्षण प्रमाणा भ्याम वस्तु सिद्धि ऐसा लिखा है, कि जब तक आप लक्षण और प्रमाण नहीं देते तब तक आप किसी वस्तु की सिद्धि नहीं कर सकते। गुरु नानक महाराज जी ऐसे बोलते नहीं हैं, उसकी व्याख्या करके बताते, प्रमाण के सहित बताते हैं, लक्षण भी करते हैं और उसका प्रमाण भी देते हैं। लक्षण किया है ना महाराज जी ने, और प्रमाण क्या देते हैं, ओंकार ब्रह्म उत्पत्त। अभी यह हमने बताया ना एका माई कैसे हुआ, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीपान, उसकी व्याख्या कैसे करते, ओंकार ब्रह्म उत्पत्त। खंडा प्रथम है साज के जिन सब सहसार उपाया, कहां से भी ले लो आप, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात वहां भी करते हैं महाराज गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह। खंडा प्रथम है साज के जिन सब संसार उपाया, सबकी वहां भी नाम लेते हैं, सबका वहां भी प्रमाण देते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी व्याख्या कहाँ करते हैं, ओंकार की, चक्र चिन्ह वर्ण जात, और दृष्टांत कहाँ देते हैं, प्रमाण कहाँ देते हैं, खंडा प्रथम साज के वहां देते हैं प्रमाण, सबका नाम लेते हैं। तैतों ही बल राम ले, नाल बाणा दहसर खाया, तैतों ही बल कृष्ण ले, कंस कैसी पकड़ गिराया, नाम लेते हैं कि नहीं, प्रमाण देते हैं कि नहीं, वो सब तुम ही है। अथवा और अच्छी तरह समझना हो तो और समझ लीजिए, भट्ट महाराज क्या कहते हैं, सतयुग तय माण्यो चलियो बल बावन भायो, त्रेत्य तय माण्यो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उग्र सैन कौ राज अभय भक्त है जिन दियो, कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फरमायो। प्रमाण देते हैं लक्षण प्रमाणा भ्याम वस्तु सिद्धि, उसको सिद्ध करते हैं ओंकार को महाराज जी, कि कैसा है ओंकार, ओंकार ब्रह्म उत्पत्त। ओंकार यजन चित, ओंकार सैल जुग भय, ओंकार वेद निर्मय। ये प्रमाण दे रहे हैं कि नहीं, वो एका माई जुगत व्याई कैसे हुआ, उसी से ब्रह्मा, उसी से वेद, उसी से सारी सृष्टि हुई है। ओंकार वेद निर्मय, वेदों की उत्पत्ति भी कहते उसी से हुई है। वेद क्या चीज है? वेद अपौरुषेय है, वेद को किसी ने नहीं बनाया है। गुरबाणी भी धुर की है, वेद भी धुर की बाणी है। कहते हैं ना महाराज, प्रमाण दे रहे हैं ओंकार वेद निर्मय। तो ओंकार का स्वरूप है, ओंकार से वेद आ गए हैं, ओंकार की ये सब उसी का ही पसारा है। ओंकार वेद निर्मय, उसी ने पैदा किए हैं। हम लोगों को द्वैत भासती है ना, क्योंकि हम लोग द्वैत में रहते हैं। तो जब तक हम माया का चिंतन करते हैं, माया का, अविद्या का पर्दा हमारे अंदर है, तब तक ये हमारे को अलग अलग भासता है। अभी मैंने एक बात आपको कही थी, 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन ही माहे। अब क्या कहेंगे यहां पर, व्याख्या कैसे करेंगे? 52 अक्षर इसके, 52 अक्षर संस्कृत के, 52 अक्षर लोक त्रय, तीन तो लोग हैं संसार में, सब कुछ इन ही माहे। कहते हैं सारा कुछ उसी ब्रह्म में है, या ऐसा कह सकते हैं कि ये संसार कैसा है, वाचा रमणम को नाम धेयम। कैसा संसार है? भगवती श्रुति क्या कहती, वाचा रमणम विकारो। ये संसार क्या है? वाणी का विकार है, कुछ भी नहीं है। वाचा रमणम विकारो नाम धेयम, मृतका एव सत्यम। जैसे हम घड़ा कहते ना, घड़ा, तो घड़ा क्या चीज है? घड़े को आप जब घड़े की व्याख्या करोगे, घड़ा एक शब्द है, एक वाणी है, एक मिट्टी का पिंड लेकर के उसको हमने क्या नाम रख दिया, घड़ा। वो वाणी से नाम रखा है ना, और तो कुछ भी नहीं है। विकारो नाम धेयम, ये जो नाम रूप है क्या है? वाणी विकारो, ये तो वाणी का विकार है केवल, और कुछ नहीं है। इसीलिए कहते हैं भक्त कबीर जी के 52 अक्षर लोक त्रय सब किस इन ही माहे। क्या होगा जब तक वाणी हमारे अंदर है, या वाणी की समर्थ है, जहां हम वाणी में चलते हैं, तब तक ही ये सब कुछ है। ये अक्षर खिर जाएंगे, ये जो अक्षर है, जो वाणी है, अंत में समाप्त हो जाएगी। अथवा जो इस अवस्था से ऊपर चले जाते हैं ना, उनके दृष्टि में ये अक्षर खिर जाएंगे, उनकी दृष्टि में अक्षरों का महत्व खत्म हो जाएगा, वाणी का, शब्द का महत्व उनकी दृष्टि में खत्म हो जाएगा। संसार को वाणी रूप नहीं जानते हैं, ये अक्षर खिर जाएंगे जब, तो क्या होगा, बाकी क्या बचेगा? अखर जो अक्षर है, यानी जो वाणी का विकार नहीं है, वह अखर इनमें ना है। वो कहते इस संसार के अंदर वह नहीं आता, सारे संसार के तीनों लोग तो आते हैं, वो तो वाणी के द्वारा हम उनका कथन कर सकते हैं, लेकिन ये अखर खिर जाएंगे जब उसकी व्याख्या करने लगेंगे ना। अखर जो है परमात्मा, ये अखर खिर जाएंगे, अर्थ क्या हुआ, ये अखर क्या होगा? जतो वाचो निवर्तन्ते, इनके अर्थों, इन अक्षरों की गम्यता नहीं बचेगी, उसको कह नहीं पाएंगे, ये अक्षर खिर जाएंगे। वे अखर इनमें ना है, इन अक्षरों की समर्थ कहाँ तक है? जहां बोल तह अक्षर आवा। कहते हैं ना भक्त जी महाराज, जहां बोल, जहां हम कुछ बोलना चाहते हैं ना, जब बोलना किसी को चाहते हैं, अक्षर आवा, तब हमारे अंदर प्रयत्न होता है, तो अक्षर निकलते हैं। जह अबोल, यहां अबोल अवस्था हो जाती है ना, बोलने का मन भी नहीं करता और बोलने के लफ्ज भी नहीं रहते। यदि बोलना चाहता भी है तो बोलने के लफाज अल्फाज नहीं है, लफ्ज नहीं है। जह अबोल हो जाता है ना, जहां जाकर के, वहां क्या होता है, वो कौन सी अवस्था है? जहां अबोल मन न रहा वा, जतो वाचो निवर्तन्ते, इसी श्रुति की व्याख्या करते हैं भक्ति महाराज। अबोल का अर्थ है वाणी,
नहीं है। मन न रहा वहां कर्त क्या है, मन भी नहीं है वहां, अंतःकरण भी नहीं है। यह तो वाचो निवर्तन्ते, वो कैसी है, वो कौन है जिसके लिए दोनों नहीं, दोनों की गमता किसके लिए नहीं है, ना वाणी की ना मन की, किसके लिए, ब्रह्म को कहने के लिए। जहाँ अबोल तह मन न रहा वाक, जहाँ अबोल अवस्था आ जाती है ना, वाणी की गमता जहाँ समाप्त हो जाती, वहां मन नहीं रहता, तो उस परमात्मा को हम कैसे समझेंगे, ना तो हमारी बुद्धि ना वाणी ना मन, तो वो कैसा है। तो भक्त जी महाराज जी समझा रहे हैं, बोल अबोल मद है सोई, कैसा है वह परमात्मा, बोल और अबोल। जब हमने किसी को कुछ कहना हो तो बोल बोलते हैं ना, किसी को बोलते हैं, एक बोल हमने बोला, हमने बोला घट, घट हमने बोल दिया है, पट अभी बोला नहीं है। तो इस दोनों के मध्य में जो अवस्था है ना, दोनों के मध्य में, बोल अबोल, बोल और अबोल के मध्य में, बोल अबोल मध्य है सोई, बोल जो बोल दिया है और जो बोलना है उसके मध्य का जो समय है ना, बीच का, उसको कौन रखता है ध्यान, वो किसकी पकड़ में है। बोल अबोल मध्य है होई, जस ओह है तस नख है ना कोई, उसको कौन जाने। बोल और अबोल के मध्य में जैसा है ना वो ब्रह्म है। बोल अबोल मद जो है, जस ओह है तस नख है ना कोई, जैसा वो है ऐसा कोई नहीं जानता। ज्यादा तो लोग बोल से जानते हैं, वैसे तो जानते ही नहीं है, लेकिन संधि है ना दोनों की, त्रिकुटी संध में पेख्या घट हु कट जागी, ऐसी बुद्ध समाचरी घट माहे त्यागी, त्रिकुटी संध। अब त्रिकुटी क्या है, धाता ध्यान दे ज्ञाता ज्ञान गे प्रमाता प्रमाण प्रमे। गुरबाणी की व्याख्या जब करने लगते हैं पता नहीं चलता क्या होता है, इसलिए कबीर जी महाराज कहते हैं कि हम लोगों ने गुरबाणी को क्या बना रखा है, हम तो राम खिलौना जाना, लोग जाने यो गीत है, भक्त जी को कहना पड़ा। जैसे संसार गीत बजते हैं ना, लोग जाने यो गीत है, ये तो ब्रह्म विचार, वो कहते ये गीत मत समझो, इसको संसार की जो बातें हैं वैसा मत समझो, ये तो ब्रह्म विचार। क्या कहते जो काशी उपदेश होए मान समर्ति बार, ये तो सब आप लोग जानते हैं ना कि काशी में उपदेश करते हैं कि नहीं शिव भगवान, मान समर्ति बार का उपदेश देखो कहां से दृष्टांत दिया है। मैंने पहले भी बताया कि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, एक दृष्टांत देते हैं कि जो कांसी उपदेश होए मान स्मृति बार, वहां देते हैं ना उपदेश भगवान शिव, तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। तो यहां पर भी भक्त जी महाराज कहते हैं कि उसको वाणी और मन से लोग समझना चाहते हैं। बोल अबोल मद है सोई, जस ओह है तस नख है ना कोई, उसको कोई जानता नहीं है। ऐसा है एक ओंकार, ओम ऐसा है, उसकी व्याख्या की नहीं जा सकती, उसको समझना बहुत कठिन है, उसका चिंतन किया जा सकता है, उसका व्याख्या नहीं किया जा सकता, वह अनुभव का विषय है, वाणी का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है। ऐसा ओम है, एक ओंकार, ऐसा वह परमात्मा एक है, देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित है। अकार उकार मकार करके उसका चिंतन में लोग करते हैं, और फिर कैसा है सत, वह परमात्मा कैसा है, सत है। सत की व्याख्या पहले ही हमने आपको बताई है कि आद सच जुगाद सच है भी सच। तो ऐसा है कि तीन कालों में जिसका नाश नहीं होता, सरलता से ऐसा ही समझते हैं सत को, कि तीनों कालों में जो एक जैसा रहता है ना, जो अव्यय है परमात्मा, वो सत्य है। यानी उसका सत्य के बगैर कुछ और भी है क्या,
यदि महाराज कहते हैं वह सत है तो इसका मतलब तात्पर्य क्या हुआ कि उस सत को समझेंगे तो ये सब कुछ असत है, जो सामने दिखाई पड़ता है ये क्या है, असत है। ये जो दिखाई पड़ता है ये असत है। क्यों असत है? ये तीनों कालों में नहीं रहता, नाम रूप पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा, मध्य में है, इसलिए ये असत है। वह परमात्मा सत है, सत चित आनंद भी उसी को कहते हैं, सत चित आनंद उसी को कहते हैं। वह सत ही चित है, चित ही आनंद है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। जो परमात्मा है वह सत स्वरूप है। फिर कहते हैं गौर, गौर का अर्थ क्या है? गौर शब्द का अर्थ है कि वह चेतन है, प्रकाश स्वरूप है। कैसा? सैभंग। कैसा है गौर? सैभंग। सैभंग का क्या अर्थ है? स्वयं प्रकाश है, ना किसी का कर्ता है, ना किसी का कर्म है, ना किसी का कारण है, ना किसी का कार्य है। वह परमात्मा वास्तव दृष्टि में वह ना किसी का कारण है ना कार्य है, ना किसी को पैदा करता है ना किसी से पैदा होता है, आपे आप निरंजन सोए, ऐसा है वो। ये ना किसी का कारण है ना किसी का कार्य है। गौर का अर्थ है चेतन स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। वैसे गौर की व्याख्या अलग भी करते हैं, समझाते भी हैं। जब गौर का अर्थ गुरु कहते हैं ना, गुरु, तब अलग व्याख्या होती है। गुह शब्दु अंधकारा स्यात्, रू शब्दस्त अनिरोध कहा, अंधकार निरोधत्वात् रू नित्यबधीयते, ऐसी भी व्याख्या करते हैं। वह परमात्मा गौर का अर्थ चेतन स्वरूप है। फिर कैसा है? प्रसाद। प्रसाद का अर्थ है कि वह कैसा है? आनंद स्वरूप है। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म। वह परमात्मा सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ऐसा वह परमात्मा है। तो उसको समझने के लिए तो एक ओंकार सतगुर प्रसाद, वह परमात्मा एक है, एक है। ओम का अर्थ है कि सबकी उत्पत्ति, पालना, रक्षा, संहार करने वाला है। और गुर का अर्थ है प्रकाश स्वरूप है, और प्रसाद का अर्थ है आनंद स्वरूप है। आद सच, जुगाद सच है, भी सच स्वरूप है। और आगे जहां तक मंगलाचरण किया है, व्याख्या तो नहीं की जा सकती, हमने पहले भी प्रार्थना की है कि इस मंगलाचरण को हम व्याख्या कर भी नहीं सकते और सुना भी नहीं सकते, केवल चिंतन कर रहे हैं जितना परमात्मा हमारे को कृपा करते हैं। आगे श्लोक, पहला श्लोक आरंभ करते हैं। जयश्री जो रागनी है ना, उसका पहला श्लोक आरंभ करते हैं।
आद पूरन मध्य पूरन अंत पूरन परमेश्वर।
अब कहते हैं आद पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर, उसी मंगलाचरण की व्याख्या करते हैं महाराज जी। जो अभी अभी हमने चिंतन किया ना, उसी को कहते हैं कि वो एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जिसको कहा ना, वह कैसा है? जब गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की वाणी, जब गुरु ग्रंथ साहब जी की आरंभता होती है तो कहां से होती है? एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष से होती है कि नहीं? उसी को दृढ़ कराते हैं मध्य में जा करके, आद पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर। कैसा परमात्मा है? आद पूर्ण, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। किसकी व्याख्या करते हैं? पूर्णमदा पूर्णमिदम, उसी की व्याख्या करते हैं। वह परमात्मा कैसा है? आद पूर्ण, आदि में वह पूर्ण था। पूर्ण का अर्थ क्या है? जिसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, यानी सत्य था। आद, आद का मतलब सृष्टि से पहले। व्याख्या तो ये जो पहले की है उसी की व्याख्या करते हैं। आदि में वह सत्य था, भूतकाल में, आदि में सृष्टि की उत्पत्ति से पहले वह सत था, या सृष्टि जब आरंभ हुई तब भी सत था। क्या किया वह परमात्मा? इस सृष्टि को हम लोग जब व्यवहार में व्याख्या करते तो कहते हैं उसने, ये परमात्मा ने सृष्टि बनाई है। तो बना के क्या किया? स्वयं इस के अंदर विराजमान है। और कैसा है? आप किया कराया, आप करने जोग, नानक एको रव रहा। कैसा है वो? आप किया कराया, आप साजी उसने सारी सृष्टि। व्यवहार में जब व्याख्या करते हैं तो ऐसा करते हैं कि आप किया कराया, आप करने जोग। कैसा है वो? तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भ्राता। तो फिर दूसरा कहां से आ गया? आपे धरती, आपे है राहक, आप जमाए पिसावे। कैसा है वो परमात्मा? आद पूर्ण मत पूर्ण में कैसा है? कैसे समझेंगे? आपे धरती, आपे है राहक। राहक किसको बोलते हैं? किसान को। धरती आप समझते हैं। वह परमात्मा कैसा है? आपे धरती, आद पूर्ण मद पूर्ण। पहले क्या है? केवल धरती है ना, आद पूर्ण। तो मद में क्या है? जब आपने धरती में बीज बोया है, अंत पूर्ण, जब आपने उस खेती को काट के तो उसका भोजन बनाया है, आद पूर्ण। धरती रूप में वह पूर्ण आप है। मध्य में जब बीज बोया तब भी आप है, जब काट के उसका आटा बनाया तब भी अंत पूर्ण। तो कैसा है? आपे धरती, आपे है राहक, आप जमाए पिसावे। फिर क्या करता है? आप पकावे, आप भांडे दे परोसे, आपे ही बह खावे। आद पूर्ण मध्य पूर्ण क्या होता है? आप पकावे, पहले आप बनाता है, फिर क्या करता है? भांडे दे परोसे, फिर क्या करता है? आपे ही बह खावे। आद पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण, यानी हर जगह वह आप ही है। आप आपे ही बह खावे, फिर क्या करता है? आपे जाल, आपे दे चिंगा, आपे चुल्ली पर आवे। क्या होता है? जाल भी आप ही हाथ धुलाता है, आप चिंगा भी देता है। चिंगा समझते हैं ना, जो दांतों में निकालने के लिए हम डका जब उसको कुछ भी बोल देते हैं। फिर आपे क्या करता है? आपे चुल्ली भरा है, कुरला भी कराता है भोजन। करता क्या है? आप ही खाता है, आप ही जल लेता है, आप ही कुरला करता है। और क्या करता है? आपे संगत साध बहाने, आपे विदा करावे। अब द्वैत कहाँ से आएगी? दूसरा कहाँ से आएगा? आपे संगत साध बहाने, आपे विदा करावे। ऐसा है आद पूर्ण मद पूर्ण। तो जो पूर्ण होता है ना, पूर्ण कब होना डोलता, पूरा किया प्रभु आप, दिन दिन चढ़े सवाया नानक होत ना घाट। पूर्ण कब होना डोलता? जो पूर्ण होता है ना, डोलता का अर्थ क्या है? डोलता नहीं है तो क्या मतलब हुआ? अचल है वह परमात्मा, चलायमान नहीं है। पूर्ण जो है कब होना डोलता, उसमें क्या होता है? पूर्ण मदा पूर्ण मदम पूर्णम अदा। वो कैसा परमात्मा है?
ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना नाम रूपात्मक प्रपंच जो दिखाई देता है अदह जो दिखाई दे रहा है ना इस समय उसी से आया है पूर्णम इदम। ये जो दिखाई दे रहा वही परमात्मा भी पूर्ण है और ये जो दिखाई देता है ना उसी में से निकला है पूर्णम इदम। यह पूर्ण है पूर्णात कहाँ से आया है पूर्ण से पूर्णात यानी पूर्ण से पूर्णात पूर्णम ये जो पूर्ण से निकला है ना नाम रूपात परमच कैसा है ये पूर्ण से निकला है और पूर्ण ही है। तो जब इसकी पूर्णता लेकर के उसमें यानी जब इसको उसमें लय करेंगे ना तो फिर क्या होगा पूर्णमेव केवल पूर्ण ही बचेगा। पहले भी मैंने बताया ना आपको भी तैसे विश्व भूते भूत भूत प्रकट हुए ताही ते मुझ पर ताही में समाहेंगे पूर्णात पूर्णम दच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। इसकी लेकर के ना पूर्णता जाए नाम रूप को जब उसमें करेंगे पूर्णस्य पूर्णमादाय फिर क्या आएगा पूर्णमेव विशिष्यते क्या होगा पूर्णम एव अवशिष्यते पूर्ण ही बचेगा यानी वह पूर्ण ही है पूर्ण ही रहेगा। मध्य में हमारी दृष्टि में नाम रूपात्मक पर हमारे को भ्रम हो गया भ्रांति हो गई तो क्या होता है भ्रम किसको बोलते हैं माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा कैसा जैसा मानी है वो है ना तैसा। भ्रांति से जीते हैं ना हम लोग भ्रांति के कारण हम लोग क्लेश में रहते हैं दुख में रहते हैं। वो कैसा है आद पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वरा वह परमेश्वर जो है ना वो कर्ता अकर्ता अन्यथा कर्ता है ऐसा ईश्वर है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है ईश्वरा। जो करता है करने वाली बात है वो भी उसके हाथ में है जो ना करने वाली है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम उल्टा भी कर देता है। कैसा करता है भेखारी ते राज करावे राजा ते भेखारी कर देता है कि नहीं नारी ते जो पुरख करावे पुरखन ते जो नारी करता कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम अन्यथा कर देता है। जो करने वाली बात नहीं उसको कर देता है भेखारी ते राज और नारी ते जो पुरख करावे पुरखन ते जो नारी ऐसा उसने करके दिखाया है गुरु नानक साहब जी ने करके दिखाया है। ऐसा परमात्मा है पूर्ण है तो उसी को कहते हैं कि आद पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वरा
सिमरांत शांत सर्वतर रमण नानक अगनासन जगदीश रहा।
वह जो परिपूर्ण परमात्मा ब्रह्म है ना उसके लिए कहते हैं कि जिन महापुरुषों के आप दर्शन कर रहे हो ना यहाँ दर्शन करने आए हो ना सात पुरुषों के महापुरुषों के वह महापुरुष उस परमात्मा ब्रह्म का चिंतन कैसे करते हैं। हम लोग भी चिंतन करते हैं महात्मा लोग भी चिंतन करते हैं हम लोगों को बताया उसके लिए कि वह परमात्मा कैसा है आद पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वरा। कैसे दो प्रकार से चिंतन करते हैं ना लोग या दो प्रकार से चिंतन करना चाहिए या तो आप निषेध मुख से चिंतन करो या विधि मुख से चिंतन करो। जैसे आपकी अवस्था है मैंने पहले भी बताया कि जिज्ञासु भेद से यह व्याख्या है यतो वायमानी भूतानि जायन्ते येन जयतानि जीवन्ति भगवती श्रुति यह कहती है यतो वायमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति जिस से ये जन्माद्यजतः ये परमात्मा ब्रह्म से यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते जिस ब्रह्म से ये सृष्टि अथवा जिस से ये पैदा हुआ है ना वह ब्रह्म है। तो यहां भी यही कहा ना आद पूर्ण मध्य पूर्ण या फिर महाराज जी कहते हैं कि चक्र चैन हर वर्ण है, ना इति कहती है ना भगवती श्रुति, वो कैसा है उसको जातो आप निषेध मुख से चिंतन करो या विधि मुख से चिंतन करो, उसको समझना है हमने। तो संत लोग कैसे चिंतन करते हैं उसका, महाराज जी कहते सिमरंत संत सबरत सर्वत्र रमणं, उसका ऐसे चिंतन करते हैं सिमरंति। बहुवचन से कहते हैं कि महापुरुष लोग सिमरंत यानी उसका चिंतन करते हैं, किस रूप से करते हैं, सर्वत्र रमणं, संत लोग उसको सिमरंत सिमरण करते हैं, चिंतन करते हैं, कैसा सर्वत्र रमणं, सर्वत्र उसका रमण करने वाला, सर्वत्र विराजमान, सर्वत्र सबके अंदर शासन करने वाला, ईश्वर रूप में अंतर्जामी रूप में ऐसा वह परमात्मा है ना। रमंत योगिन अस्मिन इति रामः, ऐसा भी कहते हैं ना महापुरुष लोग कि वह राम कैसा है, रमंत योगिन अस्मिन, जिस ब्रह्म में योगी महात्मा साधु लोग चिंतन करते ना, जिसके साथ अभेद चिंतन करते हैं वह परमात्मा राम है। तो सिमरंत संत सर्वत्र रमणं, ऐसा परमात्मा जो सर्वत्र विराजमान है, जर्रे जर्रे में है, जाल थाल महियल पूरिया स्वामी सृजनहार, जाल में थाल में पल में पल ही पल में सब थाप तपे, क्या बात है। उसको चिंतन कैसा भी कर लीजिए आप, जाल थाल महियल पूरिया का अर्थ है पूर्ण है, आद पूर्ण मद पूर्ण, स्वामी सृजनहार कैसा है, सृजनहार सारी सृष्टि को उसने पैदा किया है, पर कैसी लग रही है ये माटी, एक थी पहले अभी भी है माटी, एक अनेक भांत कर साजी सृजनहार है। उस परमात्मा की ये कला है, उसकी ये माया है कि घड़ा एक है कुमार ने क्या किया, मिट्टी एक है कुमार ने क्या किया, उसका कसोरा बनाया, उसका घड़ा बनाया, उसके बर्तन अलग अलग बना दिए ना उसने, माटी एक अनेक भांत कर साजी सृजनहार है, साजनहार है, ना कछ पोच माटी के फांडे, ना कछ पोच कुंभार है, ये किसी के बस की बात थोड़ा है। ये तो अब्बल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, परंतु हुआ क्या, एक नूर ते सब जग उपजा। नूर का अर्थ क्या है, चेतन प्रकाश स्वरूप जो ब्रह्म है उसका अर्थ है नूर, उसी को बोलते हैं एक नूर ते सब जग उपजा, उसी का नाम है। वो कैसा है, जल थल महियर पूरिया स्वामी सृजनहार, हुआ क्या, अनक भांत होए पसरिया, अनक भांति अनक प्रकार से पसरिया, विस्तार हो गया उसका, अनक भांत होए पसरिया, पर हुआ क्या, वास्तव में क्या है, नानक एकंकार, वास्तव में बदला नहीं है, एक ही है, समझने की बात है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। हुआ क्या, सूत एक मन सत हंस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई सूत एक, सूत्र एक है, सूत्र मणि गणा इव, कैसा है परमात्मा, सूत जैसे होता ना सूत्र माला में जिसमें मणके प्रवय होते हैं, सूत एक मन सत हंस जैसे, जैसे कहता है जथा, जिस प्रकार मणि जो है वो हजारों है अथवा सौ है, यानी अनक मणि है, सूत एक है, जथा कहते जिस प्रकार एक ही सूत है ना सब मणियों में, ओत पोत प्रभ सोई, अब परमात्मा ओत प्रोत है इस संसार में, उसको कहते संत लोग ऐसा चिंतन करते सर्वत्र रमणं, वह परमात्मा सर्वत्र रमण करता है। और फिर है कैसा, उसका चिंतन करने का फल क्या है? जो लोग ऐसा चिंतन करते हैं उसको फल क्या मिलता है? तो कहते हैं कि नानक अगनासन जगदीश्वरा, वह परमात्मा ऐसा है कि अगनासन, सभी अग करते पाप, सभी पापों का नाशक है, सभी पापों का नाश कर देता है, ऐसा परमात्मा है। ऐसा उपदेश महाराज जी बख्शिश करते हम लोगों को। अभी संक्षेप में इसका चिंतन करने का यत्न किया है। गुरबाणी हमने पहले भी प्रार्थना की है, अगाध है, इसको समझा नहीं जा सकता। हम लोग सभी विद्यार्थी हैं, चिंतन करते हैं अपनी पढ़ी हुई विद्या महात्मा